आज का सुसमाचार सन 32 के बारे में है। हो सकता है कि आप में से कई लोग ये नहीं जानते होंगे कि संत योहन बपतिस्ता बहुत लोकप्रिय थे। लोग उनके पास आते थे, उनको सुनना चाहते थे। ये हमारे लिए अच्छा होगा कि हम इस पर थोड़ा सा मनन चिंतन करें कि संत योहन बपतिस्ता लोकप्रिय कैसे बने। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3:5 हमें समझाता है कि यरूशलेम समस्त यर्दन प्रांत के लोग, यरूशलेम सारी यहूदिया और समस्त यर्दन प्रांत के लोग योहन के पास आते और अपने पाप स्वीकार करते हुए यर्दन नदी में उससे बपतिस्मा ग्रहण करते थे। यरूशलेम सारी यहूदिया और समस्त यर्दन प्रांत के लोग योहन के पास आते थे, बहुत से लोग आते थे। इसी प्रकार मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 1:4-5 में भी लिखा गया है कि योहन बपतिस्ता निर्जन प्रदेश में प्रकट हुआ, जो पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश देता था। सारी यहूदिया और यरूशलेम के लोग योहन के पास आते और अपने पाप स्वीकार करते हुए यर्दन नदी में उससे बपतिस्मा ग्रहण करते थे। बहुत से लोग योहन बपतिस्ता के पास आते थे। यहां तक कि प्रभु येसु भी प्रश्न करने लगते हैं कि इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 3:15 बताता है, जनता में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी और योहन के विषय में सब मन ही मन सोच रहे थे कि कहीं मसीह तो नहीं, यही मसीह तो नहीं है। योहन के बारे में जनता में बड़ी उत्सुकता थी, जिज्ञासा, उत्सुकता। जिस बात में हमें रुचि है उसके लिए हम उत्सुक होते हैं, जिस बात में हमें रुचि नहीं है उसके लिए हमें अंदर कोई उत्सुकता नहीं रहती। तो योहन के बारे में लोगों के मन में बड़ी उत्सुकता थी। इच्छुकता का कारण क्या है, प्रभु येसु स्वयं प्रश्न करते हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 7:24, ईसा लोगों से योहन के विषय में कहने लगे, तुम निर्जन प्रदेश में क्या देखने गए थे, तुम निर्जन प्रदेश में क्या देखने गए थे, हवा से हिलते हुए सरकंडे को नहीं, तो तुम क्या देखने गए थे, बढ़िया कपड़े पहने वाले पहने मनुष्य को नहीं, कीमती वस्त्र पहने वाले और भोग विलास में जीवन बिताने वाले महलों में रहते हैं, आखिर तुम क्या देखने निकले थे। प्रभु येसु स्वयं प्रश्न करते हैं, मरुभूमि में तुम लोग क्या देखने के लिए गए थे, वहां पर क्या था जिसके लिए तुम लोग आकर्षित हुए थे। जब योहन के बारे में हम सोचते हैं उसमें क्या आकर्षण था, योहन का निवास स्थान था मरुभूमि, निर्जन प्रदेश जहां कोई नहीं रहता, जहां पानी भी नहीं मिलता, उस प्रकार की जगह पर वो निवास करता था। वह किसी शहर की गली में या किसी गांव में प्रवचन नहीं देता था, निर्जन प्रदेश में जहां कोई नहीं रहता, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर कुछ जंगली जानवर मिल सकते हैं, कोई पेड़ पौधा नहीं है जिसकी छाया में रह सकता है, वहाँ पर कुछ नहीं है, निर्जन प्रदेश, कोई नहीं रहता, कोई मरुभूमि, किसी से बात नहीं कर सकता, किसी की संगति उसे नहीं मिलती, ऐसी जगह। और यहाँ तक कि योहन ने अपना परिचय दिया निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, वहां रह रहकर उसका परिचय भी बन गया निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज। और प्रभु कपड़े के विषय में भी बात करते हैं, बढ़िया कपड़े पहनने वाले मनुष्य को देखने गए थे तुम लोग, क्या कपड़े पहनते थे? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3:4 कहता है योहन ऊंट के रोवों का कपड़े पहने और कमर में चमड़े का पट्टे बांधे रहता था। ऊंट के रोवों का कपड़ा, किसी दर्जी से सिलाया हुआ कपड़ा नहीं, ऊंट के रोवों का कपड़ा जो साधारण मनुष्य पहनते हैं उसे नहीं, लेकिन चमड़े को पहनता था। और उसके भोजन को देखिए, बढ़िया भोजन करने वाला व्यक्ति, उससे तो मिलने गए थे, भोजन क्या करते थे? यो लुकस के सुसमाचार अध्याय 7:33 कहता है प्रभु यीशु अपने शिष्यों से बातें करते हुए कहते हैं, योहन बपतिस्ता आया जो न रोटी खाता और न अंगूरी पीता है और तुम कहते हो उसे अब दूध लगा है। योहन बपतिस्ता रोटी नहीं खाता था, अंगूरी नहीं पीता था, फिर क्या कहता था, क्या पीता था? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3:4 कहता है उसका भोजन टिड्डियां और वन का मधु था, टिड्डियां खाने वाला। हम नफरत करेंगे ऐसे लोगों से, टिड्डियां और वन का मधु खाने वाला व्यक्ति। तो रहने की जगह मरुभूमि, वस्त्र ऊंट के रोवों का कपड़ा और भोजन टिड्डियां, और हो सकता है उसकी भाषा शैली अच्छी हो, अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें करते हो, इसीलिए लोग वो भी देख लेते हैं। लुकस का सुसमाचार अध्याय 4:3, वो लुकस का सुसमाचार अध्याय 3:7-9 में हम उसकी भाषा शैली भी देखते हैं। जो लोग योहन से बपतिस्मा करने आते थे वह उनसे कहता था, प्यारे भाई और बहनों, नहीं, क्या कहता था? सांप के बच्चों, किसने तुम लोगों को आगामी कोप से भागने के लिए सचेत किया था? पश्चाताप के उचित फल उत्पन्न करो और ये न सोचा करो हम इब्राहिम की संतान हैं। मैं तुम लोगों से कहता हूं ईश्वर इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। अब पेड़ों के जड़ में कुलाड़ा लग चुका है, जो पेड़ अच्छा फल नहीं देता वह काटा और आग में झोंक दिया जाएगा। भाइयों बहनों आइए बैठिए, ऐसा नहीं, सांप के बच्चों भागो इधर से, दूर हो जाओ, दूर हो जाओ। और कुलाड़े की बात करता है, पेड़ों के जड़ों में कुलाड़े लग चुके हैं। तो इस प्रकार के एक व्यक्ति निर्जन स्थान में रहने वाला, टिड़ियां खाने वाला, ऊंट के रोवों का कपड़ा पहनने वाला और सब के ऊपर चिल्लाने वाला व्यक्ति, उनसे देखने के लिए भीड़ लग जाती है, उनसे मिलने के लिए भीड़ लग जाती है। ऐसा क्यों? ये एक रहस्य। और हमारे जीवन में भी हम देखते हैं इस प्रकार की चीजें हम देखते हैं। कभी कभी लोग कई किलोमीटर पैदल चलकर, कभी कभी बूढ़े व्यक्ति कई किलोमीटर चलकर किसी चर्च में चले जाते हैं, और लोग दूसरे लोग जो देखते हैं सोचने लगते हैं इस बूढ़े को क्या हुआ, बड़े सवेरे, अभी अंधेरा है, अभी भी अंधेरा है, ये क्यों जा रहा है उधर? वहां पर क्या है तो कि इसको आकर्षित करता है। लोग सोचते हैं और प्रश्न भी करते हैं, ये रोज क्यों जाता है, पानी में भी जाता है कीचड़ में भी जाता है, क्यों जाता है? ये सब ईश्वर का कार्य है, ये ईश्वर का कार्य है। अगर हमको भी लगता है ऐसी जगहों पर हमें जाना चाहिए तो ये ईश्वर का कार्य है, ये ईश्वर का कार्य है। भोपाल में जब एक मनन चिंतन के लिए जगह ढूंढ रहे थे रिट्रीट सेंटर खोलने के लिए, तब सिटी के अंदर कोई जगह नहीं मिली, सिटी से बाहर गेहूखेड़ा करके एक गांव में जगह मिली 5 एकड़। जब उस जगह को लेना है या नहीं लेना है इस पर बात पर हम लोग मनन चिंतन कर रहे थे, तो हमको शायद ईश्वर ने इसी प्रकार का की विचारधारा अपनाने को मौका दिया। मरुभूमि में चिल्लाने वाले योहन के पास अगर लोग ईश्वर की कृपा से जा सकते हैं तो ईश्वर का वचन सुनने के लिए कहीं भी चले जाएंगे। केरल में आप लोगों को मालूम है अट्टप्पाड़ी करके एक जगह है, पालक्काड जिला के अंदर है, वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है। मैं भी गया हूँ, पहले पहले तो पहुँचना बहुत मुश्किल है, अभी थोड़ा तो सुधर गया। पहाड़ी इलाका है, बहुत कम गाड़ियाँ चलती है उस जगह पर जाना, लेकिन वहाँ हजारों लोग जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर प्रभु का वचन सुनाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? नबी होशेआ के ग्रंथ में इसका कारण दिया गया है। नबी होशेआ का ग्रंथ अध्याय 2:14, प्रभु ईश्वर स्वयं कहते हैं, मैं उसे लुभाकर मरुभूमि को ले चलूंगा और उसे सांत्वना दूंगा। मैं उसे लुभाकर मरुभूमि में ले चलूंगा और उसे सांत्वना दूंगा। किसी को लुभाना सही नहीं है। बच्चों को लोग कभी कभी लुभाते हैं, चॉकलेट दिखाकर उनको ले जाते हैं और दुष्कर्म करते हैं। लुभाकर दुष्कर्म करना पाप है, लेकिन लुभाकर किसी को ईश्वर की ओर ले जाना सच्चा कार्य होता है। किसी को लुभाकर उनको सुधारना अच्छा कार्य होता है, किसी को लुभाकर उनके साथ तो दुष्कर्म करना शैतान का काम होता है। किसी को लुभाकर उससे अच्छे कार्य सत्कर्म कराना ईश्वर का कार्य होता है। तो प्रभु ईश्वर कहते हैं, मैं उसे लुभाकर मरुभूमि को ले चलूंगा और उसे सांत्वना दूंगा। प्यारे भाई और बहनों, अगर हम भी कभी कभी इस प्रकार मरुभूमि की ओर जाना चाहते हैं जहां पर ईश्वर का वचन सुनाया जाता है और वहां हमको अच्छा लगता है, हम आकर्षित होते हैं, इसका कारण यह है कि ईश्वर हमको आकर्षित करते हैं, क्योंकि ईश्वर हमको लुभाकर मरुभूमि में ले चलते हैं ताकि वहां पर ईश्वर हमारे बात सीधी बात होगी। वहां पर दूसरे लोग नहीं रहेंगे, दूसरी आवाज सुनाई नहीं देगी, और कोई नहीं रहेगा, हम और ईश्वर, मैं और मेरा ईश्वर। इस प्रकार का एक वातावरण, इस प्रकार का अनुभव ईश्वर हमें प्रदान करना चाहते हैं। और प्रभु यीशु का जन्म किसी प्रमुख गली में, किसी प्रमुख मकान में नहीं हुआ, यरूशलेम में नहीं हुआ, यरूशलेम से दूर बैतलहम छोटा सा नगर था, वहां पर उस बैतलहम में भी अच्छे अच्छे मकानों में उनका जन्म नहीं हुआ। बैतलहम यरूशलेम के बाहरी इलाके में है, और बैतलहम के बाहरी इलाके में एक चरनी में, गौशाले में उनका जन्म होता है।